नमस्कार भारत, आज है 8 फरवरी दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पिछले महीने की कामबंदी के बाद अमरीकी सीनेट ने अगले 2 साल के लिए पारित किया बजट प्रस्ताव, लेकिन प्रतिनिधि सभा में बिल का पास होना बाकी।
Our bipartisan bicameral negotiations on defense spending and other priorities have yielded a significant agreement.
पाकिस्तान ने भारत पर लगाया चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में बाधा डालने का आरोप, गृह मंत्री एहसान इकबाल बोले,
ये टारगेट किलिंग की गई, ये भी लगता है कि उसी मुहिम का हिस्सा है जिससे चीन को नेगेटिव मैसेज दिया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर में एक दलित व्यक्ति ने कथित प्रताड़ना से तंग आकर की खुदकुशी, दुनिया जहान में होगी मालदीव संकट के विविध पहलुओं पर चर्चा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अमेरिकी सीनेट ने अगले 2 साल के लिए रक्षा और कुछ दूसरी घरेलू योजनाओं के लिए 400 अरब डॉलर के बजट को पास कर दिया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसद बातचीत के दौर के बाद इस खर्च पर सहमति देने के लिए राजी हुए। रिपब्लिकन सांसद मिच मैकनेल और डेमोक्रेट सांसद चक शूमर ने इस मामले पर मध्यस्थता की। सीनेट में रिपब्लिकन नेता मैकनेल ने कहा कि इस मुद्दे पर समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा,
This bill is the product of extensive negotiations among congressional leaders.
ये विधेयक व्हाइट हाउस और सांसदों के बीच लंबी बातचीत के बाद तैयार हुआ है। ये कोई नहीं कह रहा है कि ये विधेयक परफेक्ट है, लेकिन हमने आपसी सहमति बनाते हुए बहुत मेहनत की और अमरीकी लोगों की सुविधा को प्राथमिकता दी। ये थे रिपब्लिकन सांसद मैकनेल के शब्द। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के असर से उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए मजबूर होगा। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नतीजे हासिल करने में कई महीनों का वक्त लग सकता है और धैर्य दिखाना जरूरी है। जर्मनी में चुनाव के 4 महीने बाद नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी रही एसपीडी पार्टी और चांसलर एंगेला मर्केल की सीडीयू सीएसयू के बीच गठबंधन समझौता हो गया है। हालांकि समझौते को अभी एसपीडी के सदस्यों की मंजूरी मिलना बाकी है। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के इस समझौते को अवसरवादी कदम बताया है और आरोप लगाया है कि मर्केल का उद्देश्य किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है। एफडीपी नेता मार्को बुशमैन ने कहा,
Am Ende ist keine Leitidee, kein großer Gedanke dabei, der uns in die Zukunft
आखिरकार कोई सैद्धांतिक पहल नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमें आगे ले जा सके। मर्केल ने सिर्फ एक उद्देश्य हासिल किया, किसी भी तरह जोड़ तोड़ कर अपने पद पर बने रहना। ये थे एफडीपी नेता मार्को बुशमैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव की शर्तों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत टूट गई है। ये बातचीत डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति डेनिलो मेडिना की मध्यस्थता में हो रही थी। मेडिना ने कहा कि बातचीत खत्म होने से पहले दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि चुनाव अप्रैल में कराए जाएं। बातचीत टूट जाने के बाद संभावना जताई जा रही है कि वेनेजुएला सरकार मार्च की शुरुआत में मध्यावधि चुनाव करा सकती है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि वेनेजुएला पर लगे संभावित तेल प्रतिबंधों का असर दूसरे देशों पर कैसे कम से कम हो, इसका अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका कनाडा और मैक्सिको के साथ एक कार्यबल बनाने के लिए सहमति बन गई है। टिलरसन ने कहा कि अगर वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंध लगाए गए तो इसका असर कैरिबियाई देशों पर हो सकता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक वेनेजुएला के सस्ते तेल पर निर्भर है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। शांति भंग की आशंका को देखते हुए राजधानी ढाका समेत देश में कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। खालिदा जिया को अगर 2 साल से अधिक की सजा हुई तो वो इस साल के आखिर में होने वाला संसदीय चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका में सरकारी कामकाज चलता रहे इसके लिए सीनेट में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अगले दो साल के लिए बजट प्रस्ताव पर समझौता हो गया है। हालांकि प्रस्तावित बजट का गुरुवार रात तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी मंजूर होना बेहद जरूरी है, लेकिन प्रतिनिधि सभा में अवैध अप्रवासियों के मुद्दे को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। पिछले महीने इसी मुद्दे पर अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप सा हो गया था और राष्ट्रपति ट्रंप की चिंताएं बढ़ गई थीं। न्यूयॉर्क से सुनिए सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी सेनेट में सरकार के बजट बिल की मंजूरी के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच समझौता हो जाने के बाद सरकारी कामबंदी का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है। सेनेट में रिपब्लिकन नेता मिच मैकोनल और डेमोक्रेटिक नेता चार्ल्स शूमर के बीच हुए समझौते में आम बजट और रक्षा बजट में कुल मिलाकर 400 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अप्रवासन के मामले में समझौते में कोई जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर अप्रवासन से संबंधित कोई विवादित मामला इस बिल में शामिल किया जाएगा तो वो इस बिल को मंजूरी नहीं देंगे, फिर चाहे सरकारी बजट ना मंजूर होने की सूरत में कामकाज भले बंद हो जाए। याद रहे, पिछले महीने बजट बिल इसलिए नहीं मंजूर हो पाया था क्योंकि सेनेट में डेमोक्रेट्स ने अप्रवासन मामले में रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति ट्रंप से अमरीका में रह रहे युवा गैर कानूनी अप्रवासियों के लिए रियायत की मांग की थी। तीन दिनों तक सरकारी कामकाज बंद रहने के बाद रिपब्लिकन सेनेट नेता ने डेमोक्रेट्स को यह यकीन दिलाया था कि अप्रवासन के मुद्दे पर बहस की जाएगी, तब जाके तीन हफ्तों के लिए एक बजट बिल मंजूर किया गया था। दो साल तक सरकारी खर्चों के लिए इस ताजा समझौते के बारे में रिपब्लिकन सेनेटर मिच मैकोनल ने कहा,
Our bipartisan, bicameral negotiations on defense spending and other priorities have yielded a significant agreement.
हमने रक्षा और अन्य प्राथमिकताओं को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ जो बातचीत की, ये समझौता उसी का नतीजा है। इस समझौते के नतीजे में एक लंबे अरसे में पहली बार हमारी सेना को अधिक संसाधन मुहैया होंगे, रिपब्लिकन सेनेटर मिच मैकोनल के शब्द। डेमोक्रेट सेनेटर चार्ल्स शूमर ने इस बजट समझौते को अर्थव्यवस्था और मध्यम वर्ग के लिए बेहतरीन करार दिया है। अमरीका में सरकारी कामकाज बंद होने की समय सीमा गुरुवार की आधी रात तक है और उससे पहले इस सिलसिले में एक बिल मंजूर किए जाने की तैयारियां जारी हैं। सेनेट के अलावा बजट बिल को प्रतिनिधि सभा में भी मंजूर किया जाना जरूरी है, लेकिन सेनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में कुछ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसद सेनेट में हुए इस समझौते के खिलाफ भी हैं। कुछ रिपब्लिकन्स का कहना है कि ये बिल सरकारी खर्चे को ज्यादा बढ़ाने वाला है, जबकि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी समेत कई डेमोक्रेट सांसद इस बात से नाराज हैं कि युवा गैर कानूनी अप्रवासियों के बारे में कोई समझौता क्यों नहीं किया गया। प्रतिनिधि सभा में समझौते के विरोध में और युवा गैर कानूनी अप्रवासियों के समर्थन में नैन्सी पेलोसी ने 7 घंटों से ज्यादा लंबा भाषण भी दिया, लेकिन व्हाइट हाउस ने भी इस बजट बिल पर समझौते की तारीफ की है। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि क्या गुरुवार आधी रात से पहले प्रतिनिधि सभा और सेनेट में बजट बिल को मंजूरी मिल पाएगी या नहीं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि कराची में चीनी अधिकारी की टारगेट किलिंग के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। बीबीसी हिंदी की वॉशिंगटन संवाददाता इरम अब्बासी के साथ एक खास बातचीत में पाकिस्तान के गृहमंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि भारत बिना वजह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आशंकित है और वो उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है।
चाइना ने कल ही पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी बेहतर करे। उनका एक शिपिंग एम्प्लॉई जो है उसको वहाँ पे मारा गया और एक टारगेटेड हमला इसको कहा जा रहा है। ऐसे में बलोच इंसर्जेंसी एक रियल थ्रेट है, पाकिस्तान कैसे इसको टैकल कर रहा है?
देखिए, पाकिस्तान ने काफ़ी इलेबोरेट इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के। हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एक खसूसी सिक्योरिटी फोर्स तैयार की है सी पैक प्रोजेक्ट्स के लिए। अलबत्ता ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमारा हमसाया मुल्क सी पैक से खायफ है, बिला वजह खायफ है, और उनका जासूस कुलभूषण यादव जिसको पकड़ा गया उसने इस बात को का इतराफ़ किया कि भारत ने सी पैक को सबोताज करने के लिए उसके खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात करने के लिए बाकायदा नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रखा है और एक कसीर बजट है जो इस काम के लिए वक्फ किया गया है। तो इसलिए ये एक बैटल है जिसको हम ज़रूर लड़ रहे हैं और तहफ़ फराहम कर रहे हैं चीन के लोगों को। जैसे कि ये टारगेट किलिंग की गई, ये भी लगता है कि उसी मुहिम का हिस्सा है जिससे चीन को नेगेटिव मैसेज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ऐसे वाकयात से बहुत मजबूत है
دیکھیے بھارت پہ الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن ہم اس سے بھی اس حقیقت سے بھی گریز نہیں کر سکتے. بلوچ انسرجنسی کی جو وجوہات ہیں یا بلوچ جو ناخوش ہے ریاست سے وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے.
دیکھیے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا کوئی وجود نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو تخریب کاری کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں. بلوچستان میں اس وقت امن کی صورتحال پچھلے 4 سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور ایسا کوئی خطرہ بلوچستان کے اندر نہیں کہ جسے ہم ترقی کے لیے وہاں کی یا سی پیک کے لیے خطرہ قرار دے سکیں.
یہ تھے پاکستان کے گرہ منتری احسان اقبال جنہوں نے بھارت پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں. اس پر بھارت کی پرتکریا کا انتظار رہے گا. گجرات میں وڈنگر کھیتر کے شیخپورہ گاؤں میں ایک پراتھمک اسکول میں مڈ ڈے میل یوجنا کے پربندھک کے روپ میں کام کرنے والے ایک دلت ویکتی نے کتھت روپ سے آتم ہتیا کر لی ہے. وڈنگر پردھان منتری نریندر مودی کا گرہ نگر ہے. آروپ ہے کہ اسکول کے 3 شکشکوں کے شوشن سے پریشان ہو کر مہیش بھائی چاوڑا نام کے شخص نے آتم ہتیا کی. خبر کی پوری جانکاری کے لیے میں نے بات کی بی بی سی گجراتی سیوا کے سنواد داتا روکسی گاگیتکر چھارا سے.
جی وڈنگر جو پردھان منتری کا گاؤں ہے وہ وڈنگر کے شیخ پور میں ایک پراتھمک اسکول ہے. اس اسکول میں مہیش چاوڑا نام کے جو ایک آرگنائزر ہے جو اسکول میں کام کرتے تھے مڈ ڈے میل کے لیے, انہوں نے کل سوسائڈ کیا اپنے گھر کے پاس میں ایک کنویں میں کود کر انہوں نے اپنی جان دے دی. اس میں انہوں نے ایک سوسائڈ نوٹ رکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسکول میں جو 3 ٹیچرز ہیں مومن حسین انار جی ٹھاکر اور پرجاپتی ونود, یہ 3 ٹیچرز ان کو بہت ٹارچر کرتے تھے. یہ جو مہیش چاوڑا ہے وہ دلت سماج سے ہیں, وہ دلت سماج کے ہونے کی وجہ سے یہ تینوں ٹیچر ان کو جاتی وشیک بہت سارے کمنٹ کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ٹیچرز ہیں وہ ان سے ناشتہ منگواتے تھے, چائے ناشتہ منگواتے تھے اور پیسہ وہ نہیں دیتے تھے, جس کی وجہ سے ان پر ایک ایڈیشنل فائنینشیل برڈن ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہے. پولیس نے ایک ایف آئی آر داخل کی ہے آج صبح اور ان میں یہ تینوں جو ٹیچر ہیں ان کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے. میری جب ایس پی رویندر مانلک سے بات ہوئی تو انہوں نے بی بی سی کو کہا,
ہم نے ٹیم وغیرہ بنا دی ہے اور جو ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا اس میں جتنے جلدی ہو سکے, ان کا مدد لے کے وغیرہ سب اور باقی ٹیم کا ہمارا کرائم برانچ وغیرہ مدد لے کے آروپی اور جو رشتے میں اس کو جلدی سے جلدی نیا ملے یہی پریشن رہے گا.
جی معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور جانچ بٹھا دی ہے پولیس نے. آپ کی روکسی بات ہوئی ہوگی مہیش چاوڑا کے پریوار والوں سے, ان کا کیا کہنا ہے؟
جی میری ان کے چھوٹے بھائی پیوس ویاس سے بات ہوئی. ڈیڈ باڈی مہیش بھائی کی ابھی ابھی لی ہے انہوں نے اور انہوں نے 3 مانگیں رکھی ہے سرکار کے سامنے کہ ان کی جو وائف ہے ایلا بین چاوڑا ان کو ترنت نوکری دی جائے اور یہ جو پولیس کی کارروائی سخت ہونی چاہیے اور جو بھی گورنمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں ایسے معاملوں میں وہ ساری گورنمنٹ بینیفٹس بہت جلد ہی ان کو پہنچایا جائے. ایسی 3 مانگے انہوں نے کلیکٹر کے سامنے رکھی جو سرکار نے مانگ لی ہے اور اس کے بعد ابھی ڈیڈ باڈی ان کو ملی ہے اور ان کی جو انتیم کریا ہے وہ آج اب ہونے والی ہے.
یہ تھے احمد آباد سے بی بی سی گجراتی سیوا کے سنواد داتا روکسی گاگیتکر چھارا. آگے بڑھتے ہیں. اے آئی ایم آئی ایم ادھیکش اسد الدین اویسی نے مانگ کی ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستانی کہنے والوں کو سزا دینے کے لیے قانون لایا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو 30 سال کی جیل کی سزا دی جانی چاہیے. ان کے اس بیان پر بھاجپا نیتا بے حد ناراض ہیں. پورا معاملہ کیا ہے بتا رہی ہیں مانسی داش.
اتر پردیش کے کاس گنج کے گلی محلوں میں حال میں ہوئے سامپردائک ہنسا کا شور تو ڈوب گیا ہے لیکن راجنیتک گلیاروں میں اس کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکش اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں کہا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستانی کہنا غلط ہے. انہوں نے ایسا کرنے والوں کے لیے جیل کی سزا کی مانگ کی ہے.
آج بھی 70 سال کے بعد مجھے پاکستانی کہہ کر پکارا جاتا ہے, کیوں میڈم؟ یہ ہر جگہ پر میڈم اب تو ہم ترنگا بھی نہیں لہرا سکتے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا قانون بنائیے جس طرح ایس سی ایس سی کو بنایا گیا کہ جو کوئی بھی ہندوستان میں کسی مسلمان کو پاکستانی پکارے گا اس کو نان ویلیبل بنائیں گے۔ یہی ہے ان کا رویہ، یہی ہے ان کا رویہ جس سے ظاہر ہوتا ہے ان کی سوچ اور ان کی نیت۔ آپ کیا قانون بنا سکتے کہ ہندوستان میں کسی بھی مسلمان کو کوئی پاکستانی نہیں پکارے گا؟ آپ بنائیے اس کو، 3 سال سزا دیجیے۔
اسد الدین اویسی کا یہ بیان بریلی کے ڈی ایم کے ایک پوسٹ کے بعد آیا ہے۔ ڈی ایم نے اپنے فیس بک پنے پر لکھا تھا، عجب رواج بن گیا ہے، مسلم محلوں میں زبردستی جلوس لے کر جاؤ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ، کیوں بھائی، وہ پاکستانی ہیں کیا؟ یہی یہاں بریلی کے کھیلم میں ہوا تھا، پھر پتھراو ہوا، مقدمے لکھے گئے۔ حالانکہ کاسگنج میں ہوئے ہنسا کے بعد اس کے کارنوں کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا گیا ہے اور ایک ویکتی کو گولی مارنے والے مکھی ابھیوکت کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن معاملہ کہیں تھمتا نہیں نظر آ رہا۔ اسد الدین اویسی کے بیان کے اتر میں بھاجپا کے سانسد ونے کٹیار نے کہا کہ مسلمانوں کو بھارت میں نہیں رہنا چاہیے۔ سماچار ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
مسلمان تو دیش کے اندر رہنا نہیں چاہیے، انہوں نے جن سنکھیا کے آدھار پر دیش کا بٹوارا کر لیا تو پھر یہاں اس دیش کے اندر رہنے کی کیا ہو سکتا تھی، پھر ان کو الگ بھوبھاگ دے دیا گیا، بنگلہ دیش یا پاکستان جائیں، یہاں کیا کام ہے ان کا۔
ونے کٹیار کے تازہ بیان پر چٹکی لیتے ہوئے اویسی نے انہیں بزرگ نیتا کہا، لیکن معاملے پر ادھک ٹیکا ٹپنی سے بچتے نظر آئے۔ لیکن لوک سبھا میں اٹھائے ان کے اس سوال یا کہیں ان کی اس مانگ کے ساتھ یہ معاملہ جلدی تھمنے والا نہیں لگتا۔
جانکاری دے رہی تھی مانسی داش۔ منگلوار سے اتر پردیش مادھیمک بورڈ کی پریکشا شروع ہوئی، لیکن اس کے پہلے ہی دن 180,000 چھاتر پریکشا دینے نہیں پہنچے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پریکشا میں نقل روکنے کے لیے ابھوتپورو انتظام کیے گئے ہیں، اس کارن لاکھوں چھاتر پریکشا دینے نہیں پہنچے۔ نقل پر نکیل کسنی کی سخت مہم پر ہمارے سہیوگی دلنواز پاشا نے یو پی بورڈ کے شکشا ندیشک اودھ نریش شرما سے بات کی اور پوچھا کہ سرکار نے نقل روکنے کے لیے کیا خاص انتظام کیے ہیں۔
دیکھیے، سب سے بڑی بات تو ہم لوگوں نے کی، ایک تو شروع سے ہی آن لائن پریکشا کیندر ہم لوگوں نے نردھارت کی میرٹ کے حساب سے، کہ جو جس ودیالیہ میں سارے سنسادھن ہوں اسے انہیں کو پریکشا کیندر بنایا جائے۔ دوسرا، سارے ودیالیوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے گئے۔ ہم لوگوں نے ایک وائے سچل دل بنایا ہے جو کہ ودیالیہ ہوتا ہے، اس کے مکھیہ دوار پہ ہی سارے بچوں کی تلاشی لے لی جاتی، پریکشکوں کے آئی کارڈ بنائے گئے ہیں سب کے، کون اور جس وشے کی پریکشا ہے اس وشے کا کچھ نریکشک اس دن ڈیوٹی نہیں دیتا ہے۔ یہ ساری ویوستھائیں ہم لوگوں نے کی ہے تاکہ کہیں بھی کسی طرح کی نقل کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ کہ ابھی کل ہی کی پریکشا ہوئی، پورے پردیش میں جہاں 66,37,000 بچے امتحان دے رہے ہیں، کیول 16 نقل کی پکڑ گئے۔
سر، دنیا کا یہ سب سے بڑا بورڈ ہے چھاتروں کے لحاظ سے، اور اتنی ابھوتپورو تیاریاں آپ نے کی ہیں، سی سی ٹی وی اسکولوں میں لگوا دیے ہیں، یہ ایک میراتھن رہا ہوگا، کب سے یہ تیاری چل رہی تھی آپ کی؟
ہماری یہ جو شروعات ہے وہ اگست سے شروع ہو گئی ہے، اکتوبر ہم نے پوری نیتی جاری کر دی۔
یہ تھے یو پی بورڈ کے شکشا ندیشک اودھ نریش شرما، اور دنیش اپریتی دلی سے نکلنے والے تمام اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں۔ جی دنیش، کیا کہتے ہیں آج کے اخبار؟
جی، پردھان منتری نریندر مودی کے لوک سبھا میں آکرامک بھاشن کو لگ بھگ سبھی اخباروں نے سرخی بنایا ہے۔ نو بھارت کی سرخی ہے، کانگریس کے پکوڑے پر مودی نے پروسی مرچی۔ ہندوستان کا شیرشک ہے، این پی اے پچھلی سرکار کا پاپ۔ پنجاب کیسری کی ہیڈ لائن ہے، کانگریس نے دیش کے ٹکڑے کیے۔ امر اجالا کی سرخی ہے، کانگریس کے پاپوں کی سزا بھگت رہا ہے دیش۔ پی ایم مودی کے بھاشن کے بعد کانگریس ادھیکش راہل گاندھی کے ان سے پوچھے 3 سوالوں کو بھی تمام اخباروں نے پہلے پنے پر پرکاشت کیا ہے۔ راہل نے پوچھا، رفال ڈیل میں کرپشن ہوا یا نہیں؟ کسانوں کی بہتری کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے؟ یوواؤں کو روزگار کب ملے گا پی ایم صاحب؟ چین نے مالدیو میں سینیہ دخل پر چیتاونی دی ہے، یہ خبر پرکاشت کی ہے انڈین ایکسپریس اور ہندوستان ٹائمس نے۔ چین نے کہا ہے کہ اس قدم سے حالات اور بگڑیں گے۔ دراصل مالدیو کے نرواست پورو راشٹرپتی محمد نشید نے بھارت سے موجودہ سنکٹ میں سینیہ دخل دینے کی اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے گوا میں لا ایس کی 88 کھدانوں کی لیز رد کر دی ہے، ہندوستان ٹائمس اور ہندو نے اس خبر کو پہلے پنے پر چھاپا ہے۔ ریزرو بینک نے مہنگائی بڑھنے کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے بیاج دروں میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے، یہ خبر اکنامک ٹائمس اور دوسرے کئی اخباروں میں پہلے پنے پر چھپی ہے۔ ایودھیا معاملے پر آج سے سنوائی ہوگی، اس خبر کو ہندوستان نے پہلے پنے پر جگہ دی ہے۔ मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अब सुनवाई नहीं टाली जाएगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस भी जुड़ेगा आधार से। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है। दैनिक भास्कर ने कुपोषण पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। खबर के मुताबिक दिल्ली के बच्चे कद में सबसे छोटे और मुंबई के सबसे दुबले।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए दिनेश उप्रेती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की विशेष पेशकश दुनिया जहां। मालदीव में गहराते राजनीतिक संकट के बीच भारत के एक सैन्य अधिकारी ने कहा है कि भारतीय सेना तैयार है और संकट बढ़ने की स्थिति में कम समय में ही वहां सेना की तैनाती की जा सकती है। 3 दिन पहले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मालदीव में 15 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी और जजों के साथ साथ प्रमुख विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि मालदीव में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र का अपमान है। ये पहला मौका नहीं है जब इस छोटे से देश में ऐसे हालात बने हैं। यहाँ निरंकुश शासन, तख्ता पलट और अदालतों से सत्ता के टकराव का अपना इतिहास रहा है। सुनिए आदर्श राठौर की ये विशेष पेशकश।
दुनिया जहां। नीले समंदर और सफेद रेत के तटों वाले खूबसूरत द्वीपों का देश मालदीव पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया की निगाहें यहां जारी राजनीतिक उठापटक पर टिकी हुई हैं। मगर इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत कब से हुई? जेएनयू के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज की प्रोफेसर सविता पांडे बताती हैं।
अस्थिरता तो तब से ही शुरू हो गई थी जब से इन्होंने नशीद को अरेस्ट किया था, फिर वो इधर उधर मतलब क्रॉस फ्लोरिंग और लोगों को जिस तरह से डेमोक्रेसी को उन्होंने ताक पर ही रख दिया था नशीद को जब डिपोज किया था थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे इनका रूल बढ़ता गया और इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को हटाया, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया, काफी डिस्पाइट इंटरनेशनल रिएक्शन से वो, लेकिन इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी जो होल्ड थी वो कम होती गई और सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती गई। ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के साथ भी इन्होंने इंटरफेयर किया था पहले।
दरअसल मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जिसमें विपक्ष के नेताओं पर चले मुकदमों को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यामीन प्रशासन ने न सिर्फ आपातकाल की घोषणा कर दी बल्कि जजों को भी गिरफ्तार कर लिया। मगर यामीन को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के प्रोफेसर SD मुनि बताते हैं।
पार्लियामेंट को देखते हुए यमीन माइनॉरिटी में है और उसी माइनॉरिटी को रोकने के लिए उन्होंने 10-15 जो MPs हैं उनको भी वहां से दखल कर दिया ताकि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ नहीं आए। ये जो जज का फैसला है अभी जिसमें कि पार्लियामेंट के लोगों को अगर वापस बरकरार कर दिया जाए तो शायद यमीन की मेजोरिटी पार्लियामेंट में नहीं रहेगी और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा उनके खिलाफ।
अभी तो यामीन अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास है। 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद शुरू में यहां राजशाही रही और नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इब्राहिम नासिर देश के पहले प्रधानमंत्री बने, मगर 1972 से लेकर 75 तक प्रधानमंत्री चुने गए अहमद जकी को तख्ता पलट करके निर्वासित कर दिया गया। बाद में जब देश की आर्थिक हालत खराब हुई तो राष्ट्रपति नासिर सरकारी खजाने से लाखों डॉलर लेकर फरार हो गए। इसके बाद मोमुन अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने जो अगले 30 सालों तक सत्ता में बने रहे। उनके खिलाफ भी 3 तख्ता पलट की कोशिशें हुई, इनमें से एक को भारत ने नाकाम किया था। गयूम के शासनकाल के आखिरी हिस्से में राजनीतिक आंदोलन तेज हो गए। साल 2003 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने वाले पत्रकार मोहम्मद नशीद ने गयूम प्रशासन पर दबाव बनाया कि राजनीतिक सुधार करें। 2008 में नया संविधान बना और पहली बार प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुए। इस चुनाव में मोहम्मद नशीद राष्ट्रपति बने। आज जो संकट देखने को मिल रहा है उसकी शुरुआत वहीं से हुई। प्रोफेसर SD मुनि बताते हैं।
इंटरनल पावर स्ट्रगल है जो एक बहुत हद तक जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ की उसके ऊपर बैंक है। मेरे ख्याल से नशीद ने जो टूरिस्ट स्टेक्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और जो पुराने प्रेसिडेंट गयूम थे उन्होंने सोचा कि उससे उनके और उनके चाहने वालों के इंटरेस्ट हर्ट होंगे, तो वहां से मुहिम शुरू हुई कि नशीद को किसी तरह से हटाया जाए। और नशीद ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी, क्योंकि उसके एडवाइजर्स थे ब्रिटेन के कुछ लोग, तो ये कोशिश की कि यहाँ पर उनको भी एक्सेस दी जाए इंडियन ओशन में जो चाहते थे, तो उससे भी कुछ सेक्शंस मालदीव्स के नाराज हो गए और ये वजह थी कि उन्होंने नशीद को हटाने का प्रयास किया और हटा दिया बाद।
धीरे धीरे अब्दुल्ला यामीन सत्ता पर पकड़ मजबूत करते गए और इसी कोशिश में वो निरंकुशता की तरफ बढ़ते गए। तो क्या ये वैसा ही सत्ता संघर्ष है जैसा नशीद को हटाते वक्त हुआ था? यामीन के लिए मुश्किलें कौन खड़ी कर रहा है?
ये संघर्ष अभी जो प्रेसिडेंट यामीन है उसके खिलाफ है। दरअसल हुआ ये कि यामीन को लाने में गयूम का बहुत बड़ा हाथ था। यामीन और गयूम में अंतर्द्वंद पैदा हो गया। यामीन ने आरोप लगाए हैं गयूम के बेटे पर और गयूम की बेटी शायद यामीन के साथ में एसोसिएट हो गई है, अलायंस का बना लिया है, उसको मिनिस्टर भी बना दिया था बीच में। तो ये फैमिली का भी झगड़ा है एक तरह से कहीं कहीं पर।
मालदीव में अभी पैदा हुए हालात के लिए प्रोफेसर सविता पांडे वहां पर लोकतंत्र की कमजोर बुनियाद को जिम्मेदार मानती हैं।
एक लंबा गयूम साहब का जो रेजिम चला था उसके बाद पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनी थी उसका इतना छोटा ड्यूरेशन था कि उसकी वजह से जब इन्होंने ये सब करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, इसलिए बहुत कमजोर हो गई अंतरिक्ष प्रणाली।
अब क्या होगा? यामीन ने जल चुनाव करवाने का वादा किया है, क्या उन चुनावों में निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति नशीद को भी लड़ने का मौका मिलेगा? विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? प्रोफेसर एस डी मुनी कहते हैं,
वहाँ का जो आर्मी का और पुलिस का पक्ष है उसका एक बहुत बड़ा तबका अभी भी यामीन के साथ में, और यही वजह है कि वो हर एक को डिफाई करना चाहते हैं। राजनीतिक ढांचा बहुत उनके खिलाफ हो गया है और जो लोग अभी भी खिलाफ ओपनली नहीं आ रहे हैं वो इससे डर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ज्यादा हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो उससे वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अब मालदीव में बहुत कुछ सेना और पुलिस की भूमिका पर निर्भर करता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख पर भी। मालदीव पर बहुत सारा विदेशी कर्ज है, बजट का बड़ा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में खर्च हो रहा है। यहाँ पर बड़े स्तर पर युवाओं का झुकाव कट्टरपंथ की तरफ भी हुआ है। आईएस में शामिल होने के लिए दक्षिण एशिया में मालदीव से बड़ी संख्या में लोग गए थे। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जो इस देश के सामने है वो है जलवायु परिवर्तन। इस देश के किसी भी द्वीप की ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे समंदर का जलस्तर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है इस देश के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है, मगर इन चुनौतियों से निपटना मौजूदा हालात में मुश्किल नजर आता है।
आदर्श राठौर की रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। कल केपटाउन में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। मैच में क्या कुछ खास रहा सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में तीसरा वनडे खेला गया जिसमें 124 रनों से भारत ने जीत हासिल की और इस तरह से वो इस श्रृंखला में 3-0 से आगे है। केपटाउन में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और इस जीत के साथ ही इस मैच के हीरो रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली। विराट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 160 रनों की पारी खेली और नाबाद रहे। भारत की तरफ से विराट कोहली और शिखर धवन के बीच में 140 रनों की पार्टनरशिप हुई और अपनी फॉर्म को लेकर के शिखर धवन ने पहले ही ये कहा था,
अब मेरी फॉर्म अच्छी चल रही थी, इवन जब मैं नहीं भी खेल रहा था तो भी मैं ऐसी ही बैटिंग कर रहा था और मेरे को बस ये था कि मैं उस वक्त नहीं खेल रहा था, उस वक्त मैंने मेहनत बढ़ाई हुई थी, अपने आप को और फिट कर रहा था, टाइम ज़्यादा था, तो जो जिस गेम पे मुझे वर्क करना था मुझे पता था कि मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे, वो बॉलिंग उनकी बॉलिंग टीम क्या क्या करेगी मेरे अगेंस्ट मेरे को आउट करने के लिए, तो मैं उस चीज़ पे वर्क कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ और जस्ट एंजॉयिंग माय प्रोसेस।
हालांकि कल भारत की क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 304 रनों का टारगेट किया था जो कि एक मुश्किल टारगेट माना जाता है, तो इसी के साथ भारत ने तीसरा एक दिवसीय मैच 124 रनों से जीत लिया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी इंदु पांडे। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी सीनेट ने अगले 2 साल के लिए रक्षा और दूसरी घरेलू योजनाओं के लिए 400 अरब डॉलर के बजट को पास कर दिया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसद बातचीत के बाद इस खर्च पर सहमति देने के लिए राजी हुए। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के असर से उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए मजबूर होगा। जर्मनी में चुनाव के 4 महीने बाद नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव की शर्तों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत टूट गई है। ये बातचीत डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति डेनिलो मेडिना की मध्यस्थता में हो रही थी। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।